नमस्कार भारत, आज है 16 अप्रैल दिन सोमवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। सीरिया में हमले के बाद रूसी कंपनियों पर और प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका।
Sanctions will be coming down. Secretary Mnuchin will be announcing those on Monday, and they will go directly to any sort of companies that were dealing with equipment related to Assad and chemical weapons use.
भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया, सिख श्रद्धालुओं से भारतीय राजनयिकों को नहीं मिलने दिया। भारत में बलात्कार की हालिया घटनाओं के विरोध में प्रदर्शनों का दौर जारी।
सोच का जब तक सुधार नहीं होता, अगर मंत्री ऐसे बयान देंगे कि रेप तो होते रहते हैं, इस तरह से बयान देंगे जो दिया कि तीन बच्चों की माँ के साथ रेप नहीं हो सकता, तो हमारी सोच और ये समाज कभी नहीं बदल सकता। तो ये ऊपर से शुरू होना पड़ेगा, तब जाके कुछ बदलेगा।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। अमेरिका सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ संबंध रखने वाली रूसी कंपनियों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा कि ये प्रतिबंध सीधे तौर पर उन कंपनियों पर लगाए जाएंगे जो रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल में कहीं न कहीं शामिल थे। हेली ने कहा कि अमेरिका का संदेश बेहद स्पष्ट है कि सीरिया को रासायनिक हथियारों के कार्यक्रम को बंद करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ईरानी प्रभाव के प्रसार को भी कम करने की बात कही। कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने पश्चिमी पाकिस्तान में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में ईसाई संप्रदाय के 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। अधिकारियों का कहना है कि बलूचिस्तान में ये हमला उस वक्त हुआ जब ये दोनों व्यक्ति प्रार्थना करके बाहर आ रहे थे। हमलावर बाइक पर सवार थे। हमले के बाद ईसाई बहुल इलाके में तनाव का माहौल है। लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। इस्लामिक स्टेट ने क्वेटा में ईसाइयों पर हुए पिछले 2 हमलों की भी जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब में दरहन में हो रहे अरब लीग के शिखर सम्मेलन में कहा गया कि वे फलस्तीनियों का साथ देना चाहते हैं और इसके साथ ही प्रांतीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। सऊदी अरब में शाह सलमान ने आंतरिक मामलों में टांग अड़ाने के लिए ईरान की भत्सना भी की। वहीं उनके विदेश मंत्री ने कहा कि सीरिया पर हुए कथित रासायनिक हमले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाँच होनी चाहिए। शिखर सम्मेलन में शाह सलमान ने कहा, हम अरब क्षेत्र में ईरान की चरमपंथी हरकतों की एक बार फिर कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम अरब देशों के आंतरिक मामलों में उसके हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं। ये थे सऊदी अरब के शाह सलमान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बार्सिलोना में हजारों की संख्या में कैटलोनिया वासियों ने अलगाववादी नेताओं की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया। स्पेन ने कैटलोनिया में आज़ादी के लिए हुए जनमत संग्रह को अवैध ठहराते हुए बीते साल अक्टूबर में 9 अलगाववादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था। प्रदर्शन कर रही एक महिला ने कहा, हम कैटलोनिया वासियों के DNA में ही आज़ादी के लिए भूख है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। समय के साथ ये और बढ़ती ही जाएगी। ये थे प्रदर्शन में शामिल महिला के शब्द। बीबीसी के एक खुफिया पड़ताल में सामने आया है कि उत्तर कोरिया के जो लोग यूरोपीय देशों में काम कर रहे हैं, वे अपना वेतन सरकार को भेज रहे हैं ताकि देश की परमाणु योजना को आर्थिक मदद हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि करीब 1 लाख उत्तर कोरियाई लोगों को पैसा कमाने के लिए विदेश भेजा गया है। पड़ताल में पता चला है कि रूस, चीन और पोलैंड जैसे देशों में इन्हें कुछ गुप्त गिरोहों द्वारा काम पर रखा गया है। हालांकि वारसा में उत्तर कोरियाई दूतावास ने इन दावों से इनकार किया है। सिडनी के सुदूर दक्षिणी इलाके में झाड़ियों में लगी आग से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आग पर काबू पाने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मियों को तैनात किया गया है। न्यू साउथ वेल्स रूरल फायर सर्विस का कहना है कि हवा में उड़ती चिंगारियों की वजह से दूसरी जगहों पर भी आग लगने की आशंका है। इस आग में करीब 2,500 हेक्टेयर जमीन जल गई है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा। नमस्कार भारत, संदीप सोनी के साथ। आप हमें रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। सीरिया में कथित रासायनिक हमले के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर मिसाइल हमला करने के बाद अमेरिका रूस पर अपना शिकंजा और कसने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में रूसी कंपनियों पर अमेरिका आज और प्रतिबंध लगाने वाला है। इस बीच ईरान और रूस ने कहा है कि सीरिया में पश्चिमी ताकतों की ताकतों के हमले की वजह से राजनीतिक समाधान की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए भूमिका राय से।
सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से संबंध रखने वाली रूस की कंपनियों पर अमेरिका और प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा कि इन नए प्रतिबंधों को सोमवार को सार्वजनिक किया जाएगा।
Sanctions will be coming down. Secretary Mnuchin will be announcing those on Monday, and they will go.
अमेरिकी राजदूत निकी हेली कह रही थी कि प्रतिबंध लगाए जाएंगे और ये प्रतिबंध सीधे उन कंपनियों पर होगा जो सीरिया के राष्ट्रपति असद और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल में कहीं न कहीं शामिल थे। हम ये दो टूक शब्दों में कहना चाहते हैं कि सीरिया को रासायनिक हथियारों का कार्यक्रम बंद करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि सीरिया के दोस्त ईरान और रूस भी बिजनेस के इस दर्द को समझें। निकी हेली ने उन खबरों से भी इनकार किया जिसमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप की सीरिया से अमरीकी सैनिकों को 6 महीने के भीतर वापस बुलाने की योजना है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात के लिए राजी किया था कि अमरीकी सैनिकों को सीरिया से वापस न बुलाया जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कह रहे थे कि हमने उन्हें राजी किया कि सीरिया में लंबे समय तक रहना कितना जरूरी है। सीरिया में हमने जो कुछ किया वो बहुपक्षीय रूपरेखा में वैधानिक तरीके से किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि वो मानते हैं कि सीरिया में रासायनिक हमले के लिए रूस भी जिम्मेदार है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि सीरिया में पश्चिमी ताकतों की ओर से यदि और अधिक हमले किए गए तो इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अफरा तफरी मच जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों सहयोगियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि पश्चिमी ताकतों के हमले की वजह से सीरिया में राजनीतिक समाधान की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा है।
सीरिया में हमले के बाद रूसी कंपनियों पर और प्रतिबंध लगाएगा अमरीका, रिपोर्ट सुना रही थी भूमिका राय। भारत ने दावा किया है कि भारतीय राजनयिकों को पाकिस्तान में सिख श्रद्धालुओं से मिलने नहीं दिया गया। भारत का ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों को गुरुद्वारे में भी नहीं जाने दिया। हालांकि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है। इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं कुलदीप मिश्र।
भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक तीर्थस्थलों की यात्रा के लिए द्विपक्षीय समझौते के तहत लगभग 1800 तीर्थयात्रियों का एक समूह 12 अप्रैल को पाकिस्तान की यात्रा पर गया। शनिवार को बैसाखी के पर्व पर विस्थापित ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड यानी ETPB के चेयरमैन के आमंत्रण पर भारतीय उच्चायुक्त इस जत्थे को शुभकामनाएं देने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें गुरुद्वारा पंजा साहिब नहीं जाने दिया गया और रास्ते से ही लौटा दिया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक राजनयिकों की टीम वाघा रेलवे स्टेशन पर 12 अप्रैल को पहुंचने के बाद भी सिख श्रद्धालुओं से नहीं मिल सकी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की अतार्किक राजनयिक अभद्रता करार देते हुए राजनयिक संबंधों पर वियना संधि का स्पष्ट उल्लंघन बताया है। उधर पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि विस्थापित ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के अध्यक्ष ने भारतीय उच्चायुक्त को 14 अप्रैल को बैसाखी और गुरुद्वारा पंजा साहिब में खालसा जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने का बाकायदा आमंत्रण दिया था। पिछले महीने भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के उच्चायोगों पर दखल देने के आरोप लगाए थे, उसके बाद यह इस तरह का पहला मामला है। 2 हफ्ते पहले ही भारत और पाकिस्तान राजनयिकों के साथ व्यवहार से जुड़े मुद्दों पर समाधान करने पर राजी हुए थे। पाकिस्तान के मुताबिक प्रोटोकॉल से जुड़े मुद्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि ये विडंबना है कि भारत सरकार पाकिस्तान पर श्रद्धालुओं से जुड़े 1974 के प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगा रही है, जबकि भारत सरकार हजरत निजामुद्दीन और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पर जाने के लिए पाकिस्तानी श्रद्धालुओं को वीज़ा न देकर बीते 1 साल में 2 बार इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर चुकी है।
राजनयिकों को लेकर भारत पाकिस्तान में फिर तनातनी, ब्यौरा दे रहे थे कुलदीप मिश्र।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बार अपनी सीट बदल ली है। इन चुनावों में ध्यान देने वाली एक बात और है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ रामजी को नहीं जोड़ रही है, जैसा कि उसने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में किया था, याद होगा आपको। ज्यादा ब्यौरा बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट में।
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की 127वीं जन्मदिन पर कर्नाटका के अखबारों में बीजेपी ने बड़े इश्तेहार निकाले। उनमें कहीं भी अंबेडकर को डॉक्टर बाबा साहेब रामजी अंबेडकर नहीं कहा गया, जैसा आदेश हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिया गया था। इसका कारण यह है कि बीजेपी चुनाव के समय दलितों को और नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। इनमें से पहला कारण तो केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का वो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी सरकार संविधान बदलने के लिए ही सत्ता में आई है। इसके अलावा हाल ही में SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश में कई हिस्सों में हुए प्रदर्शनों की आंच भी अभी ताजा है। लोग गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई की घटना भी नहीं भूले हैं। इन सारे वाक्यों से बीजेपी के लिए दलितों का रुख बदलता नजर आ रहा है। बीदर जिले के बरीपा बहुजन महासभा के अंकुश गोखले ने BBC को बताया,
दलित लोगों को दिया गया सिक्योरिटी होने दो, सामाजिक समानता होने दो, या आर्थिकली ऊपर आने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट में पदोन्नति मतलब प्रमोशन में होने दो, ये सभी दलितों को हताशा करने के लिए स्टेटमेंट आ रहे हैं और जजमेंट आ रहे हैं। इसलिए आने वाला जो इलेक्शन है, आने वाला दिनों में दलित कम्युनिटी एक बीजेपी को छोड़ के कौन सा क्यों पार्टी आता, लेकिन बीजेपी को नहीं आना देना बोल के यहाँ पे दलित एक मेंटेलिटी क्रिएट हो गई, एक तैयार हो गए बीजेपी के खिलाफ में।
दलित वोट कभी भी कांग्रेस के साथ हुआ करता था, लेकिन BS येडियुरप्पा ने इसको उत्तर कर्नाटका के जिलों में 2008 के चुनाव में तोड़ दिया। इससे दलितों में लेफ्ट सेक्ट के समुदाय के वोट ज्यादातर कांग्रेस के हाथ से निकल गए। लेकिन अनंत कुमार हेगड़े के बयान से जो डर इस समाज में फैला, उससे बीजेपी के कार्यकर्ता खुद परेशान हो गए हैं। बीजेपी के नेता अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहते हैं कि उनको बाएं संप्रदाय के वोटर्स से बड़ा झटका मिलने वाला है। दलित संघर्ष समिति अंबेडकरवादा के मावली शंकर कहते हैं,
खंडित इतचीन बीजेपी चलो मंत्री गलो मते बीजेपी
ये बात सही है कि दलित समाज में हर कोई कांग्रेस सरकार से खुश नहीं है, लेकिन जिस तरह की हिंसा दलितों के खिलाफ ऊना में और उत्तर भारत में हो रही है और उनके मंत्री आरक्षण को ही निकालने की बात कर रहे हैं, इससे दलितों में ये बात फैल गई है कि कांग्रेस को समर्थन देना ही ठीक होगा। ये थे मावली शंकर के शब्द। बाएं संप्रदाय में उम्मीद थी कि सिद्धरामैया सरकार सदाशिव आयोग की सिफारिशों को मान्यता दे देगी। इससे बाएं संप्रदाय को शेड्यूल कास्ट के ही कोटे में उनके संख्या के आधार पर ज्यादा आरक्षण मिल सकती है, लेकिन सिद्धरामैया सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लिया। इस पर मादिगा आरक्षण समिति के मापन्ना अखनूर कहते हैं, आखिरकार चुनाव में समर्थन इस बात पर निर्भर होगा कि किस पक्ष कांग्रेस या बीजेपी बाएं संप्रदाय को अछूत दलितों को कितने टिकट देने वाली है। ये थे मापन्ना अखनूर के शब्द। अभी यही देखना होगा कि कितने हद तक कांग्रेस और बीजेपी अछूत दलितों को चुनाव में टिकट देगी। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
भारत में बलात्कार की हालिया घटनाओं पर आक्रोश और दुख कल भारत के कई शहरों में दिखा, जब अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी छोटे बड़े समूहों में सड़कों पर उतरे। कहीं कैंडल मार्च हुआ, कहीं बेटी बचाओ के पोस्टर दिखाए गए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़ में और कई अन्य जगहों पर इसी तरह के प्रदर्शन हुए। दिल्ली के संसद मार्ग पर हुए एक ऐसे ही प्रदर्शन से BBC संवाददाता आदर्श राठौड़ ने ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है।
ये आवाज है देश की राजधानी नई दिल्ली के संसद मार्ग पर गानों के माध्यम से अपने गुस्से और नाराजगी का इजहार कर रहे युवाओं की। कठुआ और उन्नाव की घटनाओं के खिलाफ आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।
आज का कार्यक्रम था वो सिर्फ आक्रोश के बारे में नहीं था, वो सिर्फ हमारी जो उदासी है, आक्रोश है, जो हमारी सिंपथीज हैं, ये सिर्फ उसके बारे में नहीं था, ये उस चीज़ों के बारे में था कि आगे हम क्या करने वाले हैं, क्या डेथ पेनल्टी इसका सोल्यूशन है। इन सब तमाम बातों पर जो है चर्चा हुई। आर्ट्स और पोएट्री के थ्रू एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो आगे लाया गया।
युवाओं में गुस्सा इन मामलों पर समाज और सरकार दोनों के प्रति था, तो कुछ की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि ऐसे प्रदर्शनों में लोग तो आते हैं मगर जमीन पर कुछ हो नहीं रहा।
हो रहे हैं, कुछ लग रहा है कि कुछ हो रहा है, सब अपने अपना वो करने आ रहे हैं। The emotion is anger, that's the only emotion here. गुस्सा इस बात का कि प्रायोरिटीज क्या है और कितने और केसेस चाहिए। हो गया निर्भया, हो गया, that wasn't enough, मतलब और कितने, अब 8 साल पे आ गए हम, और कितना नीचे जाएंगे, और कितना नीचे जाएंगे।
Not in my name नारे के साथ आयोजित इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले युवाओं का कहना था कि उन्नाव में जिस तरह से बीजेपी के विधायक को बलात्कार का आरोप लगने के बाद भी नहीं पकड़ा गया वो दिखाता है कि सरकारों के ढीले रवैये से अपराधियों को तरह के मामले में शह मिलती है और ये सिलसिला बंद होना चाहिए।
जो रेप की घटना है वो तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, बट उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, जो प्रोटेक्शन है, वो आम है कि मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पैट्रोनेज नहीं होगा किसी भी लेवल पे नहीं।
आप पॉलिटिकल शील्डिंग इन दो केसेस में बंद नहीं करते और एक सिस्टमैटिक सोच का जब तक सुधार नहीं होता। अगर मंत्री ऐसे बयान देंगे कि रेप तो होते रहते हैं, इस तरह से बयान देंगे जो दिया कि 3 बच्चों की माँ के साथ रेप नहीं हो सकता, तो हमारी सोच और ये समाज कभी नहीं बदल सकता। तो ये ऊपर से शुरू होना पड़ेगा, तब जाके कुछ बदलेगा।
दिल्ली के संसद मार्ग पर हुए इस प्रदर्शन में कठुआ के मामले में पीड़ित पक्ष के वकील तालिब हुसैन और दीपिका राजावत ने भी शिरकत की। मुंबई, कोलकाता और चंडीगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में इसी तरह से प्रदर्शन हुए इस मांग के साथ कि रेप जैसे मामलों में सरकारों को अपना रवैया बदलना होगा ताकि इस तरह के अपराधों में शामिल रहने वाले सिस्टम को अपनी ढाल न बना सकें। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा, नमस्कार भारत, सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। वक्त हो चला है ये जानने का अब कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या कुछ छपा है। आपसे कुछ देर पहले आपको कुछ अखबारों की आवाज़ भी सुनाई दी होगी। भूमिका राय स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी संदीप, इस समय सबसे बड़ी खबर जो है देश भर में निर्भया जैसा जो गुस्सा है, जिस समय निर्भया जैसा मामला हुआ था उसी समय इस वक्त भी कठुआ और उन्नाव रेप मामले के बाद वैसा ही हाल है। तो कल पार्लियामेंट स्ट्रीट में दिल्ली में प्रदर्शन हुए, लोगों ने कैंडल मार्च निकाले और सड़कों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ये दोनों मामले छाए रहे और लोगों ने नाइट माय नेम, कठुआ रेप केस, स्पीक अप इंडिया, मेक वुमन सेफ जैसे हैशटैग के साथ बहुत से प्रचार किए और ये सारे ट्रेंड करते रहे सोशल मीडिया पे। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान ने सिख श्रद्धालुओं से मिलने नहीं दिया राजनयिकों को, तो इस खबर को भी सारे अखबारों ने प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह दी है। और हिंदुस्तान, जो दैनिक हिंदुस्तान है, उसने मोहन भागवत के कोर्ट से एक खबर दी है कि राम मंदिर वहीं बनेगा और अखबार कहता है कि मंदिर नहीं बना तो हमारी संस्कृति की जड़ें कट जाएंगी। ये सारी बातें मोहन भागवत के रेफरेंस से अखबार लिखता है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये भी है कि गोल्ड कोस्ट में जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहे थे वो खत्म हो चुके हैं और भारत जो है पदक तालिका में 3रे नंबर पर रहा है।
कितने स्वर्ण पदक के साथ?
26, इसमें 26 स्वर्ण पदक रहे हैं, 66 पदक कुल भारत ने जीते हैं और जिसमें से 20 जो हैं वो रजत पदक रहे हैं और 20 कांस्य पदक रहे हैं।
मैं यहाँ पर श्रोताओं को बताता चलूं कि अब से कुछ देर के बाद साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी में हम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे।
इसके अलावा द हिंदू एक खबर कठुआ रेप मामले से जुड़ी एक प्रमुख खबर को छापता है जिसमें जो बीजेपी के जो 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था उसे महबूबा मुफ्ती ने स्वीकार कर लिया है और आज ही से इस मामले की जो न्यायिक प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। तो ये, और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुकी हैं कि वो इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट को, उन्होंने पत्र लिखा था हाई कोर्ट को कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसकी सुनवाई की जाए और 90 दिनों के भीतर जो है मामले की सारी सुनवाई करके दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए। तो इस खबर को भी द हिंदू ने प्रमुखता से छापा है।
इंडियन एक्सप्रेस में एक तस्वीर बड़ी सी नजर आ रही है, ये क्या है?
जी बिल्कुल, ये जैसा कि हम अभी जिक्र कर रहे थे कि उन्नाव रेप केस और कठुआ मामले में जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ बर्बर हत्या की गई रेप के बाद, उसी से जुड़ा जो प्रदर्शन हुआ है सड़कों पर, उसी में एक पिता हैं, वो अपनी एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पे बिठाए हुए हैं और उसकी बच्ची के हाथ में एक बैनर है जिसमें लिखा है यू शुड प्रोटेक्ट अस नॉट हर्ट अस।
तो और ये बच्ची की जो उम्र है शायद उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किस चीज का प्रदर्शन कर रही है और देश में इस समय क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया भूमिका राय समाचार पत्रों की सुर्खियां बताने के लिए। श्रोताओं, कहते हैं कि खबरें हमें जगाने का काम भी करती हैं। यहाँ जगाने का मतलब नींद से जगाना नहीं, बल्कि उस नींद को तोड़ने से है जिसमें हम जागते हुए भी सोते रहते हैं, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता देश दुनिया में हमारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ खबरें आती हैं कभी कभी ऐसी भी, जो न केवल हमारी नींद तोड़ती हैं बल्कि हमें झकझोर कर भी रख देती हैं। आज वस्तुल्ला खान भी कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं।
जिस तरह छत, पोषण, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खुशी चाहिए, उसी तरह मेरे अंदर की दयालुता, पीड़ा, शराफत और चेतना को भी फलने फूलने, खुद को दिखाने और बाहर निकालने के लिए एक ट्रेजेडी की ज़रूरत है। ऐसी ट्रेजेडी जो मुझे कभी कभार अंदर से बुरी तरह हिला दे और मुझे ये खुशी मिल सके कि अभी मेरे अंदर की मानवता जिंदा है। एक बुरी खबर मेरी ज़रूरत है। मुझे खून में लतपत एक शव या उसकी तस्वीर या खबर चाहिए ताकि मेरे अंदर किसी और वजह से दबा हुआ दुख आँखों के रास्ते आंसू की शक्ल में बाहर निकल सके और मेरी आत्मा कुछ समय के लिए हल्की हो जाए। मुझे एक जालिम चाहिए जिससे मैं नफरत कर सकूं, एक मजलूम भी चाहिए जिसे मैं ख्यालों ही ख्यालों में गले लगा के खुद को तसल्ली दे सकूं कि अगर मैं उस वक्त वहाँ मौजूद होता, इस मजलूम पे ऐसा अन्याय ना होने देता। मुझे एक ऐसी दुखद घटना ज़्यादा अच्छी लगती है जो मेरे मोहल्ले, शहर या देश से कहीं दूर घटी हो, क्योंकि इसकी निंदा करना, शोर मचाना और इंसाफ की दुहाई देना ज़्यादा आसान होता है। मसलन कर्ज से तंग आके पंखे से लटक के आत्महत्या करने वाले पड़ोस के किसान की लाश मुझे इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वो मेरी मानवता को नंगा कर देती है। लेकिन टर्की के समुद्री तट पे मुर्दा हालत में ओंधे पड़े 2 वर्ष के सीरियन शरणार्थी एलान अल कुर्दी के शव की तस्वीर मैं खुशी खुशी भारी दिल के साथ अपने बच्चों को दिखा के कह सकता हूँ कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मुझे तालिबान के हाथों तकरीबन मर जाने वाली मलाला यूसुफजई का दुख तो है, मगर उतना नहीं जितना इसराइली फौजी को थप्पड़ मारने वाली 16 वर्ष की फलस्तीनी बच्ची आहत तमीमी पे बंद कमरे में मुकदमा चला के सजा मिलने का दुख है। मुझे धर्म के उपमान के शक में भीड़ के हाथों मर्दान यूनिवर्सिटी में मरने वाले मिशाल खान की बेगुनाही पे कोई शक नहीं, लेकिन अगर यही मिशाल खान हरियाणा के किसी रेलवे स्टेशन पे हिंदू चरमपंथियों के हाथों मारा जाता तो मेरा दुख दुगना होके और आनंद देता। मुझे जम्मू की बकरवाल बच्ची आसिफा के साथ होने वाले जुल्म पे करोड़ों और लोगों की तरह सदमा है, मगर इत्मीनान भी है कि ये तो बस आसिफा के साथ हुआ है, मेरी बच्ची तो महफूज है। मगर हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अगर आसिफा, जैनब, मलाला, इलान अल कुर्दी या अहद तमीमी की जगह मेरी बच्ची या बच्चा होता तो सब ऐसे सोचना शुरू कर दें तो निज़ाम ठीक ना होना शुरू हो जाए, जुल्म के लिए धरती तंग ना होती चली जाए। मगर ऐसा क्यों सोचें? हमें अपनी कायरता और अंदर ही अंदर खदेड़ने वाली दोषिता को सुलाने और फिर दुखी होके खुद को पुरसकून रखने के लिए ऐसे ही किरदार तो चाहिए।
ये थे पाकिस्तान से वस्तुल्ला खान, हमेशा की तरह अपने अलग अंदाज में। और अब साप्ताहिक अंक खेल खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल में कल भी 2 मुकाबले खेले गए, जहां पहले मैच में संजू सैमसन के नाबाद 92 रन की मदद से राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 19 रन से हराया। जीत के लिए 218 रन की तलाश में बेंगलोर 6 विकेट खोकर 198 रन बना सकी, जबकि दूसरे मुकाबले में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाबाद 79 रन के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स जीत के लिए 198 रनों के जवाब में 5 विकेट पर 193 रन बनाकर 4 रन से किंग्स 11 पंजाब से मात खा गई। और अब समीक्षा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय एथलीटों ने दिखाया अपना दमखम, लेकिन हॉकी ने की उनकी चमक फीकी। कल शाम ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में भव्य और रंगीन समापन समारोह के साथ ही 21वें राष्ट्रमंडल खेल भी समाप्त हो गए। मेजबान ऑस्ट्रेलिया 80 स्वर्ण 59 रजत और 59 कांस्य पदक सहित 198 पदकों के साथ पहले पायदान पर रहा। भारतीय एथलीटों ने भी दमदार प्रदर्शन किया और वो 26 स्वर्ण 20 रजत और 20 कांस्य पदक सहित 66 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने निशानेबाजी में 7 स्वर्ण 4 रजत और 5 कांस्य पदक सहित सबसे अधिक 16 पदक हासिल किए। महिला वर्ग में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 16 साल की मनु भाकर ने अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। बेहद अनुभवी गगन नारंग और पूर्व विश्व चैंपियन मानवजीत सिंह संधू का निशाना किसी भी पदक पर नहीं लगा, लेकिन मनु भाकर तो गोल्ड कोस्ट पहुँचने से पहले ही विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक जीतकर स्टार बन चुकी थी।
एक भी नहीं, 2 गोल्ड जीते हैं, वो भी मेरे फर्स्ट वर्ल्ड कप में, तो आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड। जितने भी प्लेयर्स हैं सबका ड्रीम होता है ऑब्वियसली ओलंपिक गोल्ड मेडल है, तो मेरा भी वही।
कुश्ती में तो भारतीय पहलवानों के दमखम पर शायद ही किसी को कोई शक था। सुशील कुमार ने लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीता तो महिला वर्ग में विनेश फोगाट ने लगातार दूसरी बार ये कामयाबी हासिल की। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। वेटलिफ्टिंग में भी भारतीय एथलीटों ने उम्मीदों का भार बखूबी उठाया। महिला वर्ग में संगीता चानू और पुरुष वर्ग में सतीश शिवलिंगम का पुराना अनुभव स्वर्णिम कामयाबी के रूप में काम आया। एस मीराबाई चानू और पूनम यादव ने भी पहली बार स्वर्ण पदक जीता। रियो में मिली नाकामी के बाद तो मीराबाई चानू ने जैसे ठान ही लिया था कि उन्हें अब पदक जीतना ही है।
रियो में मेरा परफॉर्मेंस अब खराब हो गई थी, तो इसके बाद हर कॉम्पिटिशन में मेडल लेना है, इसलिए सर के साथ ट्रेनिंग में और ज्यादा मेहनत किया था।
मुक्केबाजों ने भी 3 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक सहित 9 पदक हासिल किए। पैंतीस साल की एमसी मैरी कॉम ने तो कमाल के मुक्के जमाते हुए अपने विरोधियों से पार पाते हुए राष्ट्रमंडल खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। गौरव सोलंकी उभरते मुक्केबाज के रूप में उभरे तो विकास कृष्ण का अनुभव उनके काम आया, लेकिन महिला वर्ग में एल सरिता देवी की नाकामी हैरान करने वाली रही। टेबल टेनिस में मोनिका बत्रा स्टार बनकर उभरी। महिला एकल के अलावा उन्होंने महिला टीम वर्ग में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने महिला एकल में और उससे पहले महिला टीम स्पर्धा में स्वर्णिम कामयाबी में अपना अहम रोल अदा किया। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर मान रखा। स्क्वैश में दीपिका पल्लिकल और सौरव घोषाल का शुरुआती दौर में बाहर होना बेहद निराशाजनक रहा, लेकिन महिला और पुरुष हॉकी टीम बिना किसी पदक के वापस लौटेगी ऐसा तो शायद ही किसी ने सोचा था। गोल्ड कोस्ट रवाना होने से पहले बड़े बड़े दावे खोखले साबित हुए। अंतिम समय में गोल खाने की बीमारी बनी रही, पेनल्टी कॉर्नर पर गोल न कर पाने की कमजोरी सामने आई। महिला टीम के कोच शॉर्ट मारिन को पुरुष और जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह को महिला टीम का कोच बनाना भूल साबित हुई। पूर्व ओलंपियन अशोक कुमार का भरोसा अब इस टीम पर आगामी एशियाई खेल और विश्व कप के लिए नहीं जमता।
जीत मिल जाती तो हम लोग निश्चित हो जाते कि हमारे पास जो खिलाड़ी हैं उन पर विश्वास रखते, लेकिन अब जो आने वाले टूर्नामेंट में हमको फिर वही चीज आ गई, किसको रखे किसको नहीं रखे, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, ये चीज खतरनाक साबित हो सकती है।
जो भी हो, कुल मिलाकर इस बार भारतीय एथलीटों ने दिखा दिया कि वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और मुक्केबाजी में उनकी तैयारी सही थी। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
ये थे आदेश कुमार गुप्ता और अब चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ संबंध रखने वाली रूसी कंपनियों पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। कथित चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने पश्चिमी पाकिस्तान में हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब के दहरन में हो रहे अरब लीग के शिखर सम्मेलन में कहा गया कि वे फलस्तीनियों का साथ देना चाहते हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया मीना कोटवाल ने। अगली मुलाकात होगी दिन भर में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। bbchindi.com है आपके साथ।